हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है स्वप्निल विवेक। मैं आरा बिहार का रहने वाला हूँ। मैंने पटना साइंस कॉलेज के अर्थ साइंस डिपार्टमेंट से बीएससी किया है। आज हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान द्वारा प्रकाशित विज्ञान कक्षा 9 की पाठ्य पुस्तक का पहला अध्याय पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है भारत और विज्ञान। भारत हमारे प्यारे देश का नाम है और विज्ञान इस अध्याय का केंद्र बिंदु। विज्ञान, जिसे इंग्लिश में साइंस कहते हैं। विज्ञान का अर्थ क्या होता है? आपने विज्ञान में बहुत सारी परिभाषाओं को पहले से पढ़ा होगा, परंतु विज्ञान की परिभाषा क्या होती है, इस बारे में हम आज जरूर चर्चा करेंगे। या विज्ञान शब्द आया कहाँ से है, इसका अर्थ क्या होता है, विज्ञान में कितने भाग होते हैं, विज्ञान का वर्गीकरण कैसे किया जाता है, इन सब चीजों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। हमारे आसपास जितनी भी वस्तुएं हैं, उनमें कितनी वस्तुएं विज्ञान से जुड़ी हुई हैं? एक, दो या लगभग सारी? हमारे प्रतिदिन के जीवन से विज्ञान किस प्रकार से जुड़ा हुआ है, यह सोचने का विषय है। वैश्विक स्तर पर विज्ञान कितना महत्वपूर्ण है, हम और हमारा देश विज्ञान में कैसे आगे बढ़ सकते हैं, इन सब विषयों पर हमें सोचने की जरूरत है। स्टूडेंट्स, सुई की नोक से लेकर एक बड़े से रेलगाड़ी तथा हवाई जहाज तक विज्ञान हर जगह मौजूद है। अंतरिक्ष में हमारे सैटेलाइट्स और रॉकेट्स, इन सब जगहों पर विज्ञान मौजूद है। हमारे प्रतिदिन के जीवन में विज्ञान इस तरह सम्मिलित हो गया है कि हम और हमारा विज्ञान अब अलग नहीं हो सकते। इतने महत्वपूर्ण विज्ञान के बारे में हमें पढ़ने का अवसर हुआ है। चलिए हम शुरू करते हैं। क्लास 9, चैप्टर 1, भारत और विज्ञान। इस चैप्टर में हम विज्ञान का अर्थ, विज्ञान की शाखाएं, वैज्ञानिक विधि, भारत में विज्ञान की परंपरा, विज्ञान के विकास में भारत का योगदान, भारतीय वैज्ञानिक, वर्तमान भारत की वैज्ञानिक उपलब्धियां जैसे मुख्य विषयों पर चर्चा करेंगे और इन्हें पढ़ेंगे। पहले मैं किताब को पढ़ूंगा और फिर उसके बारे में आपको बताऊंगा। मेरे साथ आप भी इस चैप्टर के पहले पन्ने को देखिए और हम साथ में पढ़ना शुरू करते हैं। संपूर्ण विश्व विज्ञान के आविष्कारों एवं खोजों के कारण सुंदर, सुव्यवस्थित तथा सहज प्रतीत होता है। अतः हम यह कह सकते हैं कि यह विज्ञान का युग है। वस्तुतः विज्ञान एक बहुमानवीय प्रयत्न है और मूलतः यह प्रकृति के नियमों तथा संसाधनों को उचित ढंग से समझने का साधन है। हमारे आसपास विज्ञान से जुड़ी बहुत सारी चीजें मौजूद हैं। ये सभी विज्ञान के आविष्कार और खोज का नतीजा है। विज्ञान हमारे जीवन में इस प्रकार से सम्मिलित है कि हम और विज्ञान अलग नहीं हो सकते। इस पूरे युग में, इस समय में हम हैं, यहाँ सबसे ज्यादा डोमिनेंट अगर कोई विषय है तो वह विज्ञान ही है। इस वजह से इस युग को हम विज्ञान का युग कह सकते हैं। विज्ञान वह साधन है जिससे हम प्रकृति को सही ढंग से समझ सकते हैं, जैसे मौसम का बदलना, हमारे आसपास बहुत सारी चीजों और प्रक्रियाएं होती रहती हैं, उन सब को सही रूप से समझने का साधन विज्ञान है। अब आगे पढ़ते हैं। आप अपने पुस्तक को एक बार फिर से देखिए। अब हम पढ़ेंगे विज्ञान का अर्थ। ऋग्वेद में विज्ञान शब्द का उल्लेख है। विज्ञान शब्द संस्कृत के विज्ञानम शब्द से बना है, जिसका अर्थ है विशेष ज्ञान, जैसे वर्षा, यह परिणाम है, इसे अनुभव करना ज्ञान है। बादल बनने से वर्षा होने तक की प्रक्रिया का क्या व कैसे के रूप में अध्ययन करना विशेष ज्ञान है, अर्थात विज्ञान है। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि सनातन धर्म में चार वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। ऋग्वेद में विज्ञान शब्द के बारे में लिखा गया है। विज्ञान शब्द संस्कृत के विज्ञानम से बना है, जिसका अर्थ है विशेष ज्ञान। दरअसल एक उदाहरण से मैं इसे समझाता हूँ। जो आपके पुस्तक में भी दिया है। हमारे आसपास मानसून के मौसम में वर्षा होती है, उस वर्षा के बारे में सुनना एक जानकारी है, परंतु उसे अनुभव करना, वर्षा में भींगना, वर्षा को महसूस करना, उसे देखना, यह सब ज्ञान है। और इससे भी ज्यादा जब हम यह जाने कि आखिर यह वर्षा होती कैसे है, बादल कहाँ से आते हैं, आखिर बादल बरसते हैं क्यों हैं, उनका पानी नीचे क्यों आता है, ऊपर ही क्यों नहीं रह जाता, इन सभी प्रश्नों का उत्तर खोजना हमें विज्ञान सिखाता है। और इसी वजह से विज्ञान को विशेष ज्ञान कहते हैं, यह हमें किसी भी प्रक्रिया को गहराई से समझाता है। अब आगे पढ़ते हैं, किताब को देखिए। अंग्रेजी का साइंस शब्द लैटिन भाषा के साइंसिया शब्द से बना है, इसका अर्थ है जानना। विज्ञान को निश्चित शब्दों द्वारा परिभाषित करना कठिन है, परंतु अधिक मान्य परिभाषा इस प्रकार से दे सकते हैं। प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन से अर्जित एवं प्रयोगों द्वारा प्रमाणित वर्गीकृत ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि विज्ञान शब्द अंग्रेजी में साइंस के रूप में जाना जाता है, यह साइंस शब्द लैटिन भाषा के साइंसिया से आया है, और साइंसिया का मतलब होता है टू नो, मतलब जानना। विज्ञान जानने और नई जानकारी हासिल करने से संबंधित है, हर जगह हर एक भाषा में। वैसे तो विज्ञान को परिभाषित करना बहुत कठिन है, क्योंकि इसका क्षेत्र बहुत बड़ा है, बहुत विशाल है। फिर भी जो शिक्षाविद है उन्होंने विज्ञान को इस प्रकार से परिभाषित किया है, प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन से अर्जित। इसका मतलब है कि प्रकृति में जितनी भी प्रक्रियाएं हैं उन सभी प्रक्रियाओं को छोटे छोटे भागों में कर उनका अध्ययन करना, तथा उनसे जो जानकारी हमें प्राप्त होती है उन जानकारी को प्रयोगों द्वारा प्रमाणित करना। वैज्ञानिक एक्सपेरिमेंट्स करके यह पता लगाने की कोशिश करते हैं कि जो प्रक्रियाएं प्रकृति में हो रही हैं वह किन कंडीशंस पर डिपेंड होते हैं। इसके बाद जो जानकारी हमें हासिल होती है उस जानकारी को वर्गीकृत किया जाता है। तो प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन से अर्जित एवं प्रयोगों द्वारा प्रमाणित वर्गीकृत ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। अब हम विज्ञान के प्रमुख उद्देश्य पढ़ते हैं। पहला उद्देश्य आप अपनी किताब में देखिए, प्रकृति की कार्यशैली को समझना एवं उसकी पूर्ण रूप से व्याख्या करना। इसका मतलब है कि प्रकृति में जितनी भी प्रक्रियाएं हैं वह किस प्रकार से घटित होती हैं और उनकी व्याख्या किस प्रकार से हम कर सकते हैं, यह हमारा पहला उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य, प्रकृति के नियमों के अध्ययन को प्रयोग द्वारा प्रमाणित कर जानकारी प्राप्त करना। प्रकृति में बहुत सारे नियम होते हैं, जैसे कोई भी वस्तु ऊपर से नीचे आती है, यह एक नियम है, प्रकृति का नियम है। पृथ्वी गोल घूमती है, सूर्य एक दिशा में उगते हैं और दूसरी दिशा में डूब जाते हैं, ऐसा प्रतीत होता है, दरअसल ऐसा होता नहीं है परंतु ऐसा प्रतीत होता है। इस प्रकार के बहुत सारे नियम होते हैं इस प्रकृति में, ऋतुओं का बदलना, बारिश का होना, यह सब किसी न किसी नियम पर काम करता है। इन सभी नियमों के बारे में अध्ययन करना और एक्सपेरिमेंट्स कर उनको प्रमाणित करना हमारा दूसरा उद्देश्य है। अब हम अपने तीसरे उद्देश्य को पढ़ते हैं। आप अपनी किताब को देखिए, आवश्यक प्रयोग एवं प्रेक्षण लेना तथा उनके निष्कर्ष निकालकर उनका अनुप्रयोग कर प्रकृति पर नियंत्रण करना। विज्ञान का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य यह भी है कि हम प्रकृति पर ही नियंत्रण करना चाहते हैं। प्रकृति पर नियंत्रण का मतलब है कि कोई प्रक्रिया जो प्रकृति में सामान्य रूप से घटित होती है उसे हम कंट्रोल करना चाहते हैं। जैसे किसी खास स्पेस में हम तापमान का बदलाव करना चाहते हैं अपने उपयोग के लिए, इसके लिए कुछ उपकरण हैं और कुछ खास प्रयोग करते हैं तथा ऑब्जर्वेशन करते हैं, यह हमारा तीसरा उद्देश्य है। अब हम चौथे उद्देश्य को पढ़ते हैं, प्रकृति में विद्यमान साधनों का समस्याओं के निराकरण में उपयोग कर मानवीय जीवन को सुखद तथा उत्कृष्ट बनाना। इसका मतलब है कि प्रकृति में जो भी साधन और हमें संसाधन मिलते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोल, पानी, यह सब कुछ प्रकृति के द्वारा दिए गए साधन हैं। हम इनका उपयोग कर अपने जीवन को सुखद बनाना चाहते हैं तथा जो हमें समस्याएं होती हैं, एक जगह से दूसरे जगह जाने की जो समस्या थी, वह पेट्रोल और कोयला के कारण खत्म हुई। ऐसे संसाधनों का उपयोग कर हम अपने जीवन को और अच्छा बनाने में लगे हुए हैं। हम अब पांचवें उद्देश्य को पढ़ेंगे। किताब को देखिए। समाज में व्याप्त विभिन्न रीतियों एवं परंपराओं के वैज्ञानिक कारण को जानना। इसका मतलब है कि जो भी रीति और परंपराएं हमारे समाज में पहले से मौजूद हैं, वह क्यों है और उनके पीछे जो वैज्ञानिक कारण है वो तो किस प्रकार से काम करता है। मंदिरों का किसी शहर में सबसे ऊंचा बनाया जाना हमारी परंपरा रही है, पहले के लोग ऐसा कहते थे। शादी विवाह में अनेक जो रीतियां होती हैं वह क्यों होती हैं, इन सब का वैज्ञानिक कारण क्या है, यह हमारा वैज्ञानिक उद्देश्य है। तो इस प्रकार से हमने विज्ञान के जो उद्देश्य हैं उन सब के बारे में जाना और समझा। अब हम अपने अगले मुख्य बिंदु विज्ञान की शाखाएं के बारे में पढ़ेंगे। किताब में देखिए। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में विज्ञान है, अतः इन्हें वर्गीकृत करने का प्रयास किया गया ताकि अध्ययन सुविधाजनक हो सके। मूलतः इसे प्राकृतिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान एवं तकनीकी में वर्गीकृत किया जा सकता है, परंतु वास्तविक विज्ञान का स्वरूप तो प्राकृतिक विज्ञान में दिखाई देता है। विज्ञान को जिस प्रकार से वर्गीकृत किया गया है उनमें तीन मुख्य शाखाएं हैं। पहला प्राकृतिक विज्ञान, दूसरा सामाजिक विज्ञान और तीसरा तकनीकी। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वह है प्राकृतिक विज्ञान। प्राकृतिक विज्ञान को दो भागों में बांटा गया है, पहला भौतिक विज्ञान और दूसरा जीव विज्ञान। भौतिक विज्ञान निर्जीव वस्तुओं का अध्ययन है। भौतिक विज्ञान में हम जितने भी निर्जीव वस्तुएं हैं उनसे संबंधित जानकारियां हासिल करते हैं। भौतिक विज्ञान को पांच भागों में बांटा गया है, पहला भौतिकी, दूसरा रसायनिकी, तीसरा भूगर्भिकी, चौथा खगोलिकी और पांचवा गणित। भौतिकी को अंग्रेजी में फिजिक्स, रसायनिकी को केमिस्ट्री, भूगर्भिकी को जियोलॉजी, खगोलिकी को एस्ट्रोनॉमी और गणित को मैथमेटिक्स कहते हैं। फिजिक्स में हम मोशंस और यूनिवर्स में जितने भी प्रक्रियाएं होती हैं उनका फिजिकल अध्ययन करते हैं, वह किस प्रकार से काम करती हैं। यहाँ हम नियम और रूल्स और रेगुलेशंस के बारे में पढ़ते हैं। रसायनिकी में हम किसी भी वस्तु के बनावट को समझने की कोशिश करते हैं, उसके छोटे से छोटे स्तर पर किस प्रकार से विभाजन किया जा सकता है तथा वह वस्तु किस प्रकार से किसी दूसरे वस्तु से रिएक्ट करता है, इसका अध्ययन हम रसायनिकी में करते हैं। भूगर्भिकी में हम पृथ्वी के बारे में पढ़ते हैं, पृथ्वी के अंदर क्या है, पृथ्वी के सरफेस पर क्या है और इनको किस प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। खगोलिकी में हम अपने एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं, जो भी चीजें पृथ्वी से बाहर मौजूद हैं, तारे हैं, अनेक ग्रह हैं, एस्ट्रॉयड्स, मेटेरॉयड्स, इन सब के बारे में अध्ययन करते हैं। और गणित, कैलकुलेशंस, नंबर्स, गणित भी बहुत जरूरी है और इन सब में मौजूद है। अब हम जीव विज्ञान के बारे में जानते हैं। जीव विज्ञान सजीवों का अध्ययन है। जो भी चीजें, अनेक जो जीव हैं, जीव जंतु इस पृथ्वी पर मौजूद, पेड़ पौधे हैं, उन सब के बारे में जो अध्ययन करते हैं हम उसे जीव विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान तीन भागों में बंटा है, पहला चिकित्सा विज्ञान, दूसरा वनस्पति विज्ञान और तीसरा प्राणी विज्ञान। चिकित्सा विज्ञान को मेडिकल साइंसेस, वनस्पति विज्ञान को बॉटनी और प्राणी विज्ञान को जूलॉजी कहते हैं। चिकित्सा विज्ञान में हम किसी मानव शरीर या किसी जीव जंतु के शरीर में होने वाले रोगों के बारे में पढ़ते हैं तथा यह जानने की कोशिश करते हैं कि किसी भी शरीर में जो प्रक्रियाएं होती हैं वह सही रूप से किस प्रकार से काम करें। वनस्पति विज्ञान में हम अनेकों प्रकार के जो पेड़ पौधे मौजूद हैं उनके बारे में पढ़ते हैं और प्राणी विज्ञान मुख्य रूप से जानवरों पर ही केंद्रित होता है। अब आगे पढ़ते हैं। किताब को देखिए। विज्ञान का सरल अध्ययन करने के लिए इसे 100 से भी अधिक शाखाओं में विभाजित किया गया है। वर्तमान युग में निम्नलिखित अत्याधुनिक शाखाओं का मानव कल्याण में विशेष योगदान है। पहला अनुवांशिकी अभियांत्रिकी, दूसरा कंप्यूटर साइंस, तीसरा सूचना तकनीकी और चौथा जैव तकनीकी। अब हम इसके बाद वैज्ञानिक विधि को पढ़ेंगे। वैज्ञानिक विधि क्या होता है इसके बारे में जानकारी एकत्रित करेंगे। किताब को देखिए। हमारे चारों ओर होने वाली घटनाओं को वैज्ञानिक ढंग से सोचना ही वैज्ञानिक विधि है। इसके निम्नांकित पद हैं। पहला समस्या की पहचान करना, दूसरा परिकल्पना बनाना, तीसरा परीक्षण योग्य परिकल्पना बनाना, चौथा आंकड़े एकत्रित करना, पांचवा परिकल्पनाओं का परीक्षण करना, छठा परिणाम निकालना, सातवां पुनः परीक्षण करना, आठवां सिद्धांत का सामान्यीकरण करना। इस प्रकार प्रत्येक समस्या का ऐसा समाधान खोजना जिसको कोई भी व्यक्ति उन्हीं परिस्थितियों में पुनः परीक्षण कर सके। इसी विचारधारा को ध्यान में रखते हुए समाज एवं प्रकृति के विभिन्न क्षेत्रों को वैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत करने के कारण कुछ विषयों में विज्ञान शब्द जोड़ा गया है, जैसे सामाजिक विज्ञान, राजनीतिक विज्ञान आदि। हमारे आसपास बहुत सारी घटनाएं होती रहती हैं, बहुत सारे फेनोमेन्स जो सामान्य रूप में प्रकृति के द्वारा होते रहते हैं। इन सबको वैज्ञानिक रूप से देखना और उनके बारे में अध्ययन करना ही वैज्ञानिक विधि है। वैज्ञानिक विधि में मुख्य रूप से हम जो समस्याएं होती हैं, जो प्रक्रियाएं हैं, उसे समझने की कोशिश करते हैं और उसका अध्ययन करते हैं। फिर हम एक परिकल्पना बनाते हैं, इस परिकल्पना के आधार पर भविष्यवाणियां करते हैं, उसके बाद फिर परीक्षण करते हैं, जो एक्सपेरिमेंट्स करते हैं लैब में या लैब से बाहर, उससे हमें कुछ जानकारी और कुछ आंकड़े एकत्रित कर लेते हैं। उन आंकड़ों का अपने भविष्यवाणियों से मेल कराते हैं। जो भविष्यवाणियां हमने परिकल्पना के आधार पर किया था, उन भविष्यवाणियों से अगर इन आंकड़ों का मेल होता है तो हम परिकल्पना को सिद्धांत घोषित करते हैं। अगर भविष्यवाणियां और प्रयोगों द्वारा जो एकत्रित आंकड़े हैं वह एक समान नहीं होते हैं तो हम परिकल्पनाओं में निश्चित ही कुछ परिवर्तन करते हैं। उस परिवर्तन के बाद हम फिर से नए परिकल्पना पर भविष्यवाणियां करते हैं और फिर प्रयोग करते हैं, फिर आंकड़े निकालते हैं और फिर मेल कराने की कोशिश करते हैं। ऐसा हम तब तक करते रहते हैं जब तक कि भविष्यवाणियां और प्रयोगों द्वारा एकत्रित आंकड़े एक न हो जाए। हमें उन परिकल्पनाओं को सिद्धांत के रूप में सिद्ध करना होता है, इसलिए इस प्रक्रिया को बार बार दोहराते हैं। इस विधि का उपयोग समाज और प्रकृति के दूसरे क्षेत्रों में भी हम कर सकते हैं और इस वजह से उन क्षेत्रों के साथ साथ विज्ञान शब्द जोड़ा गया, जैसे सामाजिक विज्ञान और राजनीतिक विज्ञान। इसका अर्थ है कि सामाजिक विज्ञान में भी हम वैज्ञानिक विधि का उपयोग करते हैं और राजनीतिक विज्ञान में भी हम वैज्ञानिक विधि का उपयोग करते हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं। हमारा अगला मुख्य बिंदु है भारत में विज्ञान की परंपरा। आप अपनी किताब को देखिए। ऐसे प्रमाण मिले हैं कि 3000 वर्ष ईसा पूर्व भी इस उपमहाद्वीप में विज्ञान ने बहुत उन्नति की थी। सिंधु घाटी सभ्यता के नगर हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के अवशेषों से पता चलता है कि ये शहर सुनियोजित थे और वहां जल आपूर्ति, जलमल निकास की प्रणालियां बहुत विकसित थी। खेती बाड़ी, ईंट निर्माण उद्योग व दस्तकारी में उनकी कुशलता बड़े उच्च स्तर की थी। उनके कपड़े रुई के बने होते थे। वर्तमान से 3000 वर्ष पूर्व जो लोग थे और जो सभ्यताएं थी, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, उस समय वहां के जो अवशेष मिले हैं आज हमें, नगर हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के अवशेष, उन अवशेषों से हमें यह पता चलता है कि उस समय भी विज्ञान ने बहुत प्रगति कर ली थी। उस समय भी जलमल निकास की प्रणालियां और जल आपूर्ति के लिए जो तंत्र बनाए गए थे वो सभी बहुत उच्च स्तर की थी। ईंट निर्माण, खेतीबाड़ी, ऊंची उद्योग व दस्तकारी, सब कुछ बहुत ही बढ़िया था। जो अवशेष आज हमें मिले हुए हैं उनसे हमें यह भी पता चलता है कि उस समय के लोगों के कपड़े रुई के बने होते थे। इन सभी चीज़ों से हमें यह पता चलता है कि आज से 3000 वर्ष पूर्व ही हमारे 1930 में, और इन लोगों ने विज्ञान में बहुत प्रगति हासिल कर ली थी। अब आगे पढ़ते हैं, किताब को देखिए। ईसा से 2000 वर्ष पूर्व के ऐसे प्रमाण हैं जिसमें आर्यों की अनेक मनोवृत्तियां वैज्ञानिक थी। ऐसा समझा जाता था कि ब्रह्मांड का नियंत्रण एक प्राकृतिक नियम द्वारा होता है। प्रत्येक धार्मिक अनुष्ठान ग्रहों की स्थिति के अनुसार शुभ लग्न में विशेष रूप से निर्मित मंदिरों में किया जाता था। इस तरह से वे दक्ष खगोल वैज्ञानिक एवं गणित और ज्यामिति के ज्ञाता थे। उनके पंचांग का आधार सूर्य और चंद्रमा दोनों की गतियां थी। उन्होंने कई नक्षत्रों को जान लिया था और महीनों के नाम उनके आधार पर रखे थे। यहां से हमें यह समझना है कि जो आर्य थे आज से 2000 वर्ष पूर्व, उनकी जो सोचने समझने की शक्ति थी, जो उनकी मनोवृत्तियां थी, मनोदशा थी, वह बहुत ही वैज्ञानिक थी। उन्होंने ब्रह्मांड के बारे में बहुत कुछ समझ लिया था। उनका ऐसा मानना था कि जो ब्रह्मांड है वह एक प्राकृतिक नियम द्वारा कार्य करता है और ब्रह्मांड में अनेक नियम हैं। उस समय जो धार्मिक अनुष्ठान होते थे, जैसे मंदिरों में पूजा पाठ और रीति रिवाज, जो परंपराएं होती थी, वह सभी ग्रहों की स्थिति के अनुसार शुभ लग्न में होती थी। शुभ लग्न का मतलब है एक खास समय में वो सभी अपने पूजा पाठ को करते थे, और वो जो पूजा पाठ है वो कहीं भी नहीं करते थे, उसके लिए खास जगह होती थी जैसे मंदिर। उनके जो पंचांग थे वह सभी सूर्य और चंद्रमा के अनुसार तय होते थे। उन्होंने बहुत ही दक्ष रूप से खुद को विकसित कर लिया था। अब आगे पढ़ते हैं, किताब को देखिए। ऋतुओं के परिवर्तन से अति सूक्ष्म जीवाणुओं और वंशानुवंशिक कारणों से बीमारी होती है का सिद्धांत स्वीकार किया गया है। निदान और उपचार की आयुर्वेद पद्धति प्रचलित है। आयुर्वेद में शल्य चिकित्सा की प्रणाली अत्यंत विकसित थी। बाद में अरबवासियों और यूनानियों ने भी आयुर्वेद को अपनाया। रोमन साम्राज्य के क्षेत्र में भारतीय दवाइयों की काफी मांग थी। इसका मतलब है कि एक सिद्धांत अपनाया गया था जिसमें यह कहा गया कि ऋतुओं के परिवर्तन से आज भी हमें बहुत सारी परेशानियां होती हैं, जैसे गर्मी से बरसात का मौसम जब परिवर्तित होता है, बरसात से जब ठंड आती है, उस समय हमारा रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत ही प्रभावित होता है। इस वजह से हमें रोग हो सकते हैं। उसके बाद जो सूक्ष्म जीवाणु हमारे आसपास मौजूद हैं उन सभी से भी हमें रोग होते हैं। वंशानुवंशिक कारणों से भी रोग होते हैं। वंशानुवंशिक कारण का मतलब है हमारे माता पिता से भी हमें रोग आ सकते हैं। यह एक सिद्धांत है और इन्हीं तीनों प्रकार से रोग हो सकते हैं। इन सब का उपचार और निदान आयुर्वेद पद्धति में जो लिखा गया है वह बहुत ही विकसित हो चुका था, और यह सब बहुत पहले की बात है। आयुर्वेद में जो शल्य चिकित्सा की प्रणाली है वह भी बहुत विकसित हो चुकी थी। आयुर्वेद इतना सही रूप से काम करता था या है कि अरबवासियों और यूनानियों ने भी आयुर्वेद को अपनाया था। रोमन साम्राज्य में भी भारत की जो दवाइयां बनी होती थी उन दवाइयों की काफी मांग रहती थी। अब हम आगे पढ़ते हैं, किताब को देखिए। 18वीं शताब्दी में नए नए तत्वों की खोज का सिलसिला प्रारंभ हुआ। इससे पूर्व केवल 7 धातुओं का ज्ञान था। यह है स्वर्ण, रजत, तांबा, लोहा, टीन, सीसा और पारद। इन सभी धातुओं का उल्लेख प्राचीनतम संस्कृत साहित्य में उपलब्ध है, जिनमें ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद भी सम्मिलित हैं। वेदों की प्राचीनता ईसा से हजारों वर्ष पूर्व निर्धारित की गई है। अतः हम भारत में रसायन शास्त्र का प्रारंभ ईसा से हजारों वर्ष पूर्व कह सकते हैं। पुरातात्विक प्रमाण में लोहा, तांबा, रजत, सीसा आदि धातुओं की शुद्धता 95% से 99% तक पाई गई, एवं पीतल, तांबा जैसी मिश्र धातुएं पाई गई, जो इस बात की परिचायक है कि भारत में उच्च कोटि के धातु कर्म की प्राचीन परंपरा रही है। स्टूडेंट्स, आज जितने भी हम धातु जानते हैं उन सब की खोज 18वीं शताब्दी के बाद हुए हैं। उससे पहले हमें सिर्फ 7 धातुओं के बारे में ही पता था। इन सभी 7 धातुओं के बारे में हमारे पवित्र ग्रंथ और वेदों में लिखा गया है, और वेद तो ईसा से भी बहुत पूर्व में ही लिखे गए हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि रसायन जो इन धातुओं और अन्य कणों पर निर्भर होता है, इसकी खोज इसके बारे में जो जानकारी है वो हमारे पूर्वजों ने ही बहुत पहले से एकत्रित किया हुआ है। रसायन की खोज भारत में बहुत पहले से है। इसका पुरातात्विक प्रमाण लोहा, तांबा, रजत और सीसा से मिलता है। पीतल, तांबा जैसी मिश्र धातुएं भी हमारे देश में अवशेष के रूप में पाई गई हैं। पीतल और तांबा जैसी वस्तुएं बनाना आम बात नहीं है। इसके लिए रसायन की बहुत उच्च कोटि की ज्ञान होना चाहिए। इस प्रकार से हमारे देश में धातु कर्म अर्थात मेटलर्जी का उपयोग बहुत पहले से ही होता आ रहा है। अब आगे पढ़ते हैं। अब अपनी किताब को देखिए। ईसा से 400 वर्ष पूर्व नालंदा, वाराणसी एवं तक्षशिला विश्वविद्यालय बहुत विख्यात थे। गणित, खगोल विज्ञान और चिकित्सा विज्ञान में अभूतपूर्व प्रगति हुई। सुश्रुत ने 26 शताब्दी पहले रोगी की कटी हुई नाक ठीक की थी। उन्हें प्लास्टिक सर्जरी का जनक कहते हैं। इनकी सुश्रुत संहिता का अरबी के अनुवाद किया गया। किताब शासन ए हिंदी और किताबें सुश्रुत नालंदा, वाराणसी और तक्षशिला विश्वविद्यालय की बदौलत भारत ने बहुत पहले से ही गणित, खगोल विज्ञान और चिकित्सा विज्ञान में बहुत ही ज्यादा प्रगति कर ली थी। सुश्रुत ने आज से 2600 साल पहले रोगी की कटी हुई नाक ठीक की थी। आज तो हम प्लास्टिक सर्जरी और जितने भी रिसर्च हुए हैं उनकी बदौलत यह कर सकते हैं, परंतु उस समय सुश्रुत ने ऐसा कर दिखाया था। इसी वजह से तो उन्हें प्लास्टिक सर्जरी का जनक कहते हैं। सुश्रुत इतने फेमस थे कि उनकी किताब का अरबी में भी अनुवाद किया गया था, जिसे किताब शासुन हिंदी और किताबें सुश्रुत कहते हैं। अब आगे पढ़ते हैं। आप अपने किताब को देखिए। 20 शताब्दी पहले चरक ने चरक संहिता में कहा, जो चिकित्सक अपने ज्ञान और समझ का दीपक लेकर बीमार के शरीर को नहीं समझता, वह बीमारी कैसे ठीक कर सकता है। उसे सबसे पहले उन सब कारणों का अध्ययन करना चाहिए जो रोगी को प्रभावित करते हैं, फिर उसका इलाज करना चाहिए। ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि बीमारी से बचा जाए, न कि इलाज किया जाए। आज से 2000 साल पहले चरक, जो बहुत बड़े चिकित्सक ज्ञाता थे, उन्होंने कहा था किसी भी चिकित्सक को सबसे पहले बीमार व्यक्ति के शरीर में होने वाली सभी प्रक्रियाओं को समझना चाहिए। रोगों के जो मुख्य कारण हैं, उनका अध्ययन करना चिकित्सक के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। चरक ने यह कहा था कि हमें बीमारी से बचना चाहिए। बीमारी होने के बाद उसका इलाज कराना स्वस्थ रहने का एक तरीका तो है, परंतु बीमारी से बचना ज्यादा जरूरी है। अब आगे पढ़ते हैं। ईसा से 500 वर्ष पूर्व ही कर्णाद ऋषि ने परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत कर दिया था। ईसा से 200 वर्ष पूर्व पतंजलि ऋषि ने बताया कि मनुष्य के हृदय में नाड़ियां और ऐसे केंद्र हैं जिन्हें चक्र कहते हैं। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, हृदय, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा एवं सहस्त्रार नामक कुल 8 चक्र हैं। इन्हें सक्रिय बनाए रखने के लिए 8 चरण या स्थितियां दी हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, भावना और समाधि। यह आखिरी चरण ही सबसे कठिन है। इससे व्यक्ति ऊर्जावान, आत्मनियंत्रित एवं क्षमताओं से परिपूर्ण अनुभव करता है। कर्णाद ऋषि, ईसा से 500 वर्ष पूर्व की बात है कि कर्णाद ऋषि ने परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत किया था। आज हम जॉन डाल्टन की द्वारा दी हुई परमाणु सिद्धांत को पढ़ते हैं, परंतु हमारे देश के कर्णाद ऋषि ने इस सिद्धांत को बहुत पहले ही दिया था। फिर पतंजलि ऋषि ने मनुष्य के शरीर में नाड़ियां और अनेक केंद्रों के बारे में बताया जिनको कंट्रोल करने से मनुष्य स्वस्थ और संतुलित रह सकता है। उनके द्वारा मनुष्य के शरीर में 8 चक्र होते हैं, वो मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, हृदय, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा एवं सहस्त्रार हैं। इन 8 चक्रों को सक्रिय बनाए रखने के लिए उन्होंने 8 चरण या स्थितियां दी हैं। मैं उन 8 के बारे में आपको बताता हूं। पहला है यम, जो सार्वजनीन नैतिक धर्मादेश है। दूसरा अनुशासन से अपने को शुद्ध करने का तरीका है, जिसे नियम कहते हैं। तीसरा आसन है, यह उठने बैठने और विश्राम करने का तरीका बताता है। प्राणायाम सांस पर नियंत्रण करना होता है। मन को बाहरी चीजों से हटाना प्रत्याहार कहलाता है। धारणा संकेंद्रण है। मनन या चिंतन को भावना कहते हैं और अति चेतन स्थिति को समाधि कहते हैं। पतंजलि कहते हैं कि समाधि सबसे कठिन है और इसे हासिल करना मनुष्य के जीवन में महत्वपूर्ण होता है। इन आठों चक्रों को अगर सक्रिय बनाया जाए तो मनुष्य ऊर्जावान, आत्मनियंत्रित और क्षमताओं से परिपूर्ण अनुभव करता है। तो इस प्रकार से आज मैंने भारत में विज्ञान की परंपरा, वैज्ञानिक विधि, विज्ञान की शाखाएं और विज्ञान का अर्थ जैसे मुख्य विषयों को यहाँ पढ़ा और उसके बारे में आपको बताया। इसके बाद हम विज्ञान के विकास में भारत का योगदान और भारतीय वैज्ञानिक जैसे मुख्य विषयों पर अपने अगले सेशन में पढ़ेंगे। मुझे आशा है कि जिन विषयों को मैंने आज पढ़ा उसके बारे में आप और भी जानकारी एकत्रित करेंगे। अपने अगले सेशन तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।